जी अस्सलाम वालेकुम
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब का, आपका जी आया नो आपको वेलकम यहाँ पे वैनकूवर से और मेट्रो वैनकूवर से, कैलगरी से, एडमिंटन से, ये लाइव है सर। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बात का आगाज़ करते हैं जनाब स्पीकर, जिस वक्त अभी हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे आप, तो मैं जिक्र कर रहा था ये जो हालिया पाक भारत कशीदगी है और ये जो ये जैसा हसास मौका था, अवामी सतह पे तश्वीश और अमन की ख्वाहिश वाज़े तौर पे नज़र आई, दोनों तरफ नज़र आई। ऐसे में क्या आप समझते हैं कि पंजाब असम्बली, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की एक नुमाइंदा असम्बली है, पंजाब वैसे भी बॉर्डर प्रोविंस है, तो क्या असम्बली को भी इन जज्बात की तर्जुमानी कुछ करनी चाहिए थी? अरकान असम्बली ने सूरत हाल में आपकी उनके साथ इंटरेक्शन रही होगी, उनके क्या व्यूज़ थे और आपके नज़दीक जो सूबाई असम्बलियों को खारजा पॉलिसी, सरहदी कशीदगी के मुतल्लिक कोशिशों पे कोई राय, कोई करारदाद ये पास करनी चाहिए, इस पे बारे में कुछ कमेंट कर सके?
जी आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने साथ इस पे बात करने के लिए मदद किया। देखें ये क्योंकि बड़ा मामला ऐसा है जिसमें हर शख्स के जज्बात हैं और फितरी तौर पे अमन की ख्वाहिश आपने दुरुस्त कहा, ये बड़ी पैरामाउंट है, लेकिन क्योंकि दो चीज़ें जो पब्लिक की एक नॉलेज में थीं और उस पे बड़े सवालिया निशान थे। अब मिसाल के तौर पे जब ये हमला हुआ तो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ ये था कि ये एक दहशतगर्दी की कार्रवाई के नतीजे में जो हलाकतें हिंदुस्तान में हुई तो उसको पनिश करने के लिए, जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश करने के लिए ये फैसला किया गया कि क्रॉस बॉर्डर मिसाइल हिट किए जाएंगे। अब ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 90,000 के करीब लोग इसी दहशतगर्दी की गेंद चढ़े हों, जिस मुल्क की इकॉनमी 150-200 बिलियन $200 का लॉस फेस कर रही हो और जहाँ पे तवातर के साथ, यानी इस साल में ये जो भी हम मई में बैठे हैं और 500 के करीब लगभग दहशतगर्दाना हमले हो चुके हैं, तो ऐसा मुल्क क्या इस तरह की बात को तस्लीम करेगा, वो भी शवाहिद के बगैर?
शवाहिद के बगैर।
और अगर ये और ये भी एक तरफा तौर पे अगर कोई एक मुल्क ये फैसला कर ले कि ये उसने तय कर लिया, कोई एविडेंस भी नहीं दी, कोई शवाहिद भी नहीं है, और फिर ये फैसला कर लिया कि ये जो उनके मुल्क के अंदर एक सिक्योरिटी लैप्स है, जो उनकी इंटेलिजेंस की फेलियर है, जो उनके मुल्क के अंदर बेशुमार मसाइल हैं, लोगों के इश्यूज हैं, पब्लिक के वहाँ पे रिएक्शंस हैं, पब्लिक के रिएक्शंस वहाँ पे मुसल्ला भी हैं, तारीखी तौर पे मुसल्ला भी हैं, वहाँ पे उनकी जो मूवमेंट्स चल रही हैं उनके अपने अपने उसकी अपनी जहते हैं जैसे भी हैं, तो ये हिंदुस्तान अपने एक इंटरनल मामले को उठाकर अपने किसी नेबरिंग कंट्री पे इस तरह से करे जैसे लगे कि एक तो उसकी हेजमनी क्रिएट हो रही है, दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी भी ब्रीच हो रही है और फिर वो यूनिलैटरली स्ट्राइक्स कर लेगा और दूसरा मुल्क बिल्कुल एक वेजिटेटिव अंदाज में उनको रिसीव भी करेगा और रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो ऐसी कैफियत में लोगों के जज्बात होते हैं। हर किसी की अपनी एक पेट्रियाटिक अप्रोच होती है, एक नेशनलिज्म की अप्रोच होती है, उसमें फिर जज्बात जो हैं वो बाज़ुका तंगेख भी होते हैं, लेकिन ये एक हौसला अफजा बात है कि इस सारे पहलू में आपने दुरुस्त कहा कि अमन की ख्वाहिश बार तौर पे गालिब ख्वाहिश थी और हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसमें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, दैट वाज देयर डिज़ायर फॉर पीस, और जब ये इनेविटेबल हो गया कि ये इस तरह का हमला उन्होंने कर दिया तो उसके बाद उसका रिस्पॉन्ड लाजमी था। पंजाब असेंबली में भी ये एक पंजाब असेंबली ने एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास की जो कि बड़े रेयर ओकेजन पे होती है कि जो लोग मुख्तलिफ़ुल ख्याल पॉलिटिकल पार्टीज, यू नो दैट आपके भी ये शायद मुशाहदे में है कि जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ पे लोग अपनी अपनी पोजीशंस पॉलिटिकल रखते हैं, लेकिन नेशनल इश्यूज पे एक जॉइंट करारदाद आई और उस करारदाद के मतन में जो सबसे अहम बात थी, जहाँ पे ये जिक्र था कि ये वो अपनी अफवाज के साथ हैं, जहाँ पे ये जिक्र था कि हुकूमत के इस फैसले को जिसमें उन्होंने जो अभी कार्रवाई की इस बात का जिक्र था, जहाँ पे सताइश थी अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त मार कार्रवाई की। अमन की ख्वाहिश का भी इसमें बड़े वाजे तौर पर जिक्र था, जहाँ पे सिंतास की मौतली की बात थी उस पर भी लोगों के अपने जज्बात थे। तो यस पंजाब असेंबली क्लियरली स्पोक ऑन इट, और बड़ी उसमें दो टोक मौकफ उन्होंने इख्तियार किया। और जहाँ तक कि आपने कहा कि जो खारजी मामलात हैं या जो ऐसे मामलात हैं जिसमें खारजा पॉलिसी का तल्लक हो, क्योंकि सूबा पंजाब आप जानते हैं या बाकी भी कोई भी सूबा हो, वहाँ की करारदाद में हम यही बात करते हैं कि हम वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं या वफाकी हुकूमत के किए गए इन इकदाम की सताइश करते हैं, तो उसका एक मोड और मैनर होता है, तो उसके तहत बात की जाती है।
जी, और आपने बहुत साहिब तरीके से सवाल का जवाब दिया, और हमारी सबकी ये ख्वाहिश है, हम यहाँ पे जो बसते हैं पाकिस्तानी हिंदुस्तानी और एट लार्ज जो पंजाबी हैं दोनों साइड के, यहाँ पे वैंकूवर एक बहुत बड़ा मरकज़ है डाइवर्सिटी का, बल्कि कैलगरी एडमिंटन भी एक बहुत बड़ा मरकज़ है, टोरंटो बहुत बड़ा मरकज़ है, और यहाँ पे बहुत एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, और यहाँ पे बहुत तशवीश पाई गई अक्रॉस द बोर्ड, बहुत तशवीश पाई गई, और अमन की जो ख्वाहिश है उस पर भी बात हुई। आगे इस बात को थोड़ा सा और बढ़ाएं, मैं अब सूबे के बारे में कुछ बात करें मलिक साहब, 18वीं तरमीम हो जाती है, सूबों को आइनी तौर पर ख़ुद मुख्तारी दी जाती है, मैं इस पर यह सवाल करना चाहूँगा, अब आप उसके एज ए स्पीकर एक बहुत रिस्पेक्टेड होता है, आप उसकी इन्स एंड आउट्स को बहुत अमली तौर पर देख रहे होंगे, मैं पूछना चाहूँगा कि अमली तौर पर जो ख़ुद मुख्तारी का वादा था वो है, और आज के जो सियासी और इंतज़ामी हालात हैं, आप सूबाई ख़ुद मुख्तारी मरकज़ के साथ ताल्लुकात को किस नज़र से देखते हैं, और आपके ख्याल में कानून साजी का जो अमल है उस पर इख्तियारात की तकसीम में वाकई मौसर बेहतरी आई है ये 18वीं तरमीम के बाद?
देखिए ये मामला मुझे आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा, रादर थोड़ा सा नहीं है, वुड बी फेयरली टेकिंग यू बैक प्री पार्टीशन। ये कहानी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ जुड़ी हुई है, और दोनों जमातों का, चाहे वो कांग्रेस की पब्लिक प्लेज थी या मुस्लिम लीग की पब्लिक प्लेज थी, दोनों में इसका जिक्र ज़रूर मौजूद था कि ये रीजनल बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे और लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये सूबों की खुद मुख्तारी और सूबों की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के तयन में ये अपने इकदाम उठाएंगे, और फिर सूबों की खुद मुख्तारी की बात भी उस वक्त के पॉलिटिकल चार्टर में डिमांडेड थी, जो कि फाउंडर्स ऑफ दी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, और रादर कांग्रेस की तो ज़रा ज़्यादा विजिबल थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की पूरी कैंपेन जो थी वो तो टू नेशन थ्योरी पे बेस्ड थी, एंड कांग्रेस के कुछ और रीजंस भी थी। और फिर ये जो इसकी इस डेमोक्रेटाइजेशन के पूरे प्रोजेक्ट की जो अगली शक्ल हमने देखी, हिंदुस्तान ने इसमें बड़ा जल्दी अपने लिए एक आइन बनाया और उसको फिर अमल दरामद भी उस पर किया, लेकिन पाकिस्तान में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से होता हुआ बिलाखिर 1973 में
जी
ये फैसला हो गया कि सूबे होंगे, और सूबों की ये कंकरेंट लिस्ट भी बन गई कि ये वफाक के होंगे और ये दोनों मिलके कर सकेंगे या ये सिर्फ सूबों के इख्तियार में होंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान में तो एक मसला ये बना कि एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया जो कि जनरल मुशरफ के टाइम में आया, उसने उसका आइन का हुलिया बिल्कुल बिगाड़ दिया, वो 18वीं तरमीम में उस असल आइन को बहाल किया गया, वही के रादर थोड़ी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ ज्यादा कदम बढ़ाया गया। अब ये दो स्ट्रीम्स में नीचे लाया गया, एक एग्जेक्ट लाया गया ऑफ टूवर्ड्स द प्रोविंसेस, और एक लेजिस्लेटिव स्ट्रीम में लाया गया जो कि पार्लियामेंट से फ्लो करती थी। अब जो एग्जेक्यूटिव साइड थी उसमें कुछ इश्यूज थे, फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि एक बड़ी सुपीरियर एग्जीक्यूटिंग पोजिशन रखती है नॉर्मली प्रोविंसेस से ज्यादा, फंड्स तो दे दिए गए, माली इख्तियारात ज्यादा डिवॉल्व हुए, और उसके साथ कुछ पॉलिटिकल इख्तियारात भी डिवॉल्व हुए नीचे। इसी तरह से पार्लियामेंट्री साइड पे भी ये इख्तियारात जो हैं ज्यादा नीचे आए, फ्राइज भी नीचे आए, और उसमें फिर एक ट्रांजिशन होती है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं तो ट्रांजिशन में अगर कोई 5 साल 7 साल का अरसा वफाक से नीचे सूबों में इख्तियारात के मुंतकली में और फ्राइज की जिम्मेदारी अदा करने के सिलसिले में कुछ वक्त लग जाता है, लेकिन इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। और जो ये सूबों की जिम्मेदारियां हैं ये बढ़ रही हैं, सूबों के इख्तियारात बढ़ रहे हैं। जो मेन इश्यूज हैं लाइक एजुकेशन, सेहत, गो एम एन एडवोकेट कि ये तो बिल्कुल इससे भी नीचे मुंतकिल होने चाहिए टू द लोकल गवर्नमेंट्स। मैं तो इस चीज़ का दाई हूँ, लेकिन इट इज़ हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन।
जी, उसके बारे में भी बात करते हैं, बल्कि उसी से ही बात कर लेते हैं। भाई यकीनी तौर पे दुनिया की जितनी डेमोक्रेसीज हैं ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि लोकल बॉडीज़ किए बगैर जो पायदार तरक्की है वो मुमकिन नहीं है। पंजाब में मेरे ख्याल में 2015 के बाद से अब तक जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं नहीं हुए, और अब हुकूमत पंजाब ने मेरे ख्याल में सेप्टेम्बर की डेट दी है इस साल के इलेक्शन होंगे। तो सवाल ये है कि क्या इस बार इस ऐलान को वाकई हतमी समझा जाए, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका कोई बाकायदा शेड्यूल जारी नहीं किया, इस पर कुछ कमेंट करेंगे स्पीकर साहब?
बिल्कुल, देखिए बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट्स की भी तारीख थोड़ी जेलसली गार्ड करनी पड़ेगी कि इनके साथ हुआ क्या। नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन रही है उसमें ये तस्वर किया जाता है, क्योंकि एक टीयर हमारे पास वफाकी है, एक टीयर हमारे पास सूबाई है, और जो तीसरा टीयर है ये रादर, वैसे तो दुनिया में इसको नर्सरी समझा जाता है कि ये पॉलिटिकल लोगों की ग्रूमिंग और उनकी टोटल जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की बेस बेस होती है वो लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा इमर्ज करती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ हुआ कि लोकल गवर्नमेंट्स को जो लेजिटिमेसी तलाश करने की एक एंडेवर थी जो कि डिफरेंट मिलिट्री रूलर्स की थी, तो वो जब भी लोकल गवर्नमेंट्स का, क्योंकि हमारे पास 1953 ऑनवर्ड्स देर हैव बीन डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स जो कि किसी न किसी मिलिट्री रूलर के साथ उसको लेजिटिमेसी देने के लिए या उसको एक इलेक्टोरल प्रोसेस देने के लिए वो उनकी शनाख्त बनती रही। तो जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई तो पहली चीज़ उनका खात्मा ख्याल किया गया कि ये जो अरेंजमेंट एक मिलिट्री गवर्नमेंट में किया गया था उसको ख़त्म किया जाए। तो इस वजह से थोड़ी सी एक सीसो बनी रही जो कि जाहिर लगता है ऐसे प्रेमा फिशाए के जिसके साथ लोकल गवर्नमेंट्स का और डिविडेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी का टू गो टू पब्लिक एट लार्ज वाकई नुकसान हुआ। लेकिन अब इस चीज़ की रियलाइजेशन एट ऑल काउंट्स है, जुडिशरी इसमें बड़ी प्रोएक्टिव है, जुडिशरी इसमें को बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स भी दे चुकी हैं। फिर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 140A ऐड किया है जो कि क्लियरली पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, उस डेवोल्यूशन की बात करता है। तो अभी क्योंकि मेरे वॉच में सूबाई असम्बली में जो मुख्तलिफुल ख्याल सियासी लोग बैठे हैं उन सब का ये रिजॉल्व है कि ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट आना चाहिए जिसके साथ फंक्शंस उसकी नॉट जस्ट लेट अलोन द कंपोजिशन ऑफ दैट, लेकिन फंक्शंस पे ज़्यादा लोगों का इसरार और जोर है कि वो इख्तियारात जैसे ये लोकल डेवलपमेंट हो, लोकल स्कूल हो, लोकल टैक्सेशन हो, लोकल हेल्थ हो, लोकल ट्रांसपोर्ट हो, ये सब पे बड़ा गौर व फिक्र लोग कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ा जामिया और अच्छा एक्ट आएगा जो कि फिर किसी एक की लाइक और डिसलाइक पे नहीं जाएगा। एंड प्रॉब्ली दिस टाइम ये भी एक फीलिंग है कि इसको एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट के तौर पे लाया जाए,
और वो विश के ऐसा हो, ये बहुत ज़रूरी है। और जनाब स्पीकर, आपने तालीम की बात की, सेहत की बात की, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान पूरे में तालीम, सेहत और स्पेशली जो पीने का साफ़ पानी है वो बुनियादी मसाइल ताहल मैं समझता हूँ कि हल तलब हैं। पंजाब के हवाले से बात करें तो पिछले साल गंदम की ख़रीदारी के हवाले से एक बुरान देखने में आया। आप एक अवामी नुमाइंदा ऐवान के तौर पे क्या समझते हैं बतौर स्पीकर के जो करंट असम्बली है हमारी पंजाब की असम्बली, उसकी जो यह प्रायोरिटी लिस्ट क्या है इस इन पूरे हवाले से, इन अवामी इशूज़ के हवाले से तरजीह क्या है, स्पेशली अगर मैं तालीम सेहत और पीने का जो साफ़ पानी है और एग्रीकल्चर डेफिनेटली इन इन तीन चार चीज़ों के हवाले से कुछ कॉमेंट कर सके?
आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो नॉलेज इकोनॉमी में दे आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म कि जो एक बेस है, लिटरेसी बेस है, वो डिजिटलाइज कैसे होती है, एंड गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग अ ह्यूज मनी ऑन दैट. दूसरा मैंने देखा है कि हेल्थ में, और हेल्थ का भी वो सेक्टर जो बड़ा नज़रअंदाज था, जो कि हमारे देहात में था, 60-65% आबादी आज भी हमारी देहात में, ये रूरल अर्बन करेक्टर के टाउन्स में है. तो वहाँ पे जो हमारा रूरल हेल्थ सिस्टम था, और जो कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे, ये रूरल हेल्थ सेंटर्स थे, उनके ऊपर गवर्नमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनको रीवैम्प करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, और टू द एक्सटेंट ऑफ सर्जरी इवन, ये सारी फैसिलिटीज वहाँ पे दी जा रही हैं. और एरियाज को जियो टैग किया जा रहा है कि कौन से देहात या कौन से एरियाज या कौन सी वार्ड्स एंड काउंसिल्स किस एक हॉस्पिटल से लिंक होंगी, और वहाँ पे जो ये हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम है, किस तरीके से गवर्नमेंट के और एक मॉडर्नाइज सिस्टम के साथ, जो कि बड़ा इंडिजीनियस है, एंड इट इज क्वाइट अपीलिंग ऑल्सो, लग रहा है कि बड़ा एक कामयाब निज़ाम होगा. वैसे मैं फ्रेंकली आई हैव टू एडमिट कि हेल्थ केयर सिस्टम्स की बहस तो अभी वेस्ट में जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स है, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम है, आई वोंट बी इन अ बेटर इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन व्हाट यू हैव इन कनाडा, लेकिन हम देखते हैं कि भी किसी ना किसी हर वक्त किसी एक बेहतरी की कोशिश में लगे, और पिछले निज़ाम आती तनकीद भी जेर बहस रहती है. तो यहाँ पर ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का भी अपनी दुरुस्त निशानदेही की, ये हमारे कुछ खितों में इसका मसला बड़ा संजीदा है, और बल्कि अब तो एक और इशू से हम गुजर रहे हैं, जैसे आपके पास अभी 47 वायदे की बाजगश्त भी होगी, और हमारा को जो वाटर लेवल है उसके नीचे फर्दर जाने में, जो पहली हमारी एक्वाफायर लेयर है उसे भी हम नीचे जा चुके हैं, कितनी नीचे से पानी लेकर हम आ रहे हैं, जो तीसरी लेयर है उसको भी डिक करने में चले गए हैं. तो देर आर इशूज ऑफ वाटर, आर सीरियस इशूज ऑफ वाटर, एंड देर इज अ सीरियस नीड ऑफ थिंकिंग ऑल्सो के इसके ऊपर कोई हिकमत अमली ऐसी मुरतब करें कि वी लिव एंड द जनरेशंस दोज विल कम अप आफ्टर अस दे लिव.
100%. और मलिक साहब, ये आप कानून साजी की बात कर रहे थे, पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा हो, वजीर, अराकीन असम्बली या मुतलका सेक्रेटरीज जो हैं वो गैर हाजिर हों, तो फिर कानून साजी और अवामी नुमाइंदगी कहाँ रह जाती है? और इस तरह के गैर संजीदा रवैयों पर आपकी बरहमी जो है वो भी खबरों का हिस्सा बनी. तो आपके ख्याल में ये जो गैर संजीदगी है उसकी बुनियादी वजह क्या है? ये कल्चर बन चुका है कि मतलब सेक्रेटरीज नहीं आएंगे, वफाकी वजीर नहीं आएंगे, अराकीन भी बस उस तरह नहीं, तो ये क्या पार्लिमानी निज़ाम के वकार के लिए खतरे की अलामत नहीं है, ये पार्टिसिपेशन का लो लेवल जो है?
नहीं, ये एक्चुअली होता ऐसे है कि जब हुकूमत में आप हों या आप किसी मिनिस्ट्री को चला रहे हों, तो उस वक्त आपकी कुछ प्रायोरिटीज जो हैं वो डिफरेंट अंदाज में आप उनको लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन ये तो एक टेक्स्ट बुक रीजनिंग है कि वट एवर आप एज गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो आपकी क्योंकि जो आप मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टू आंसर द हाउस है, तो ये मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मॉडल में इतनी पैरामाउंट है कि इससे हट के कहीं आगे चला नहीं जा सकता. लेट अलोन कि आप सिर्फ लेजिस्लेटिव लिस्ट की बात करें, लेट अलोन कि आप वहाँ पर अपनी बजट को पास करने की बात करें, आपकी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द हाउस है टू आंसर द पब्लिक इन द हाउस. तो ये एक बाज़ूकात हो जाता है, इट्स नॉट वेरी गुड प्रैक्टिस, बट इट हैपेंस, यस आई हैव टू एडमिट, हो जाता है ऐसा. तो फिर हमें उन्हें पुल बैक करना पड़ता है, उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप जनाब यहाँ पर तशरीफ लेकर आए हैं और आपके ऊपर ये एक आईनी जिम्मेदारी है जो आपको बासूरत अदा करनी है. एंड नॉर्मली इन प्रेशर ऑफ देयर थिंग्स टू रन द मिनिस्ट्रीज एंड द गवर्नमेंट, दे हैव सो मेनी एंगेजमेंट्स दैट समटाइम्स दे डू ओवरलुक दैट इफ इन नॉट आंसरिंग इन पार्लियामेंट टुडे और इन द असेंबली टुडे वी कैन आंसर इट टुमारो वाली बात, लेकिन दे हैव टू कम बैक देयर, हाउस में तो वहीं रहना जाएगी
जी. और हमारे एक रेगुलर लिस्टर हैं हजरी साहब, उनका एक सवाल है, मैं उसको रीफ्रेस कर रहा हूँ। वो जो पूछना चाहते हैं वो ये है कि पंजाब तारीखी, सकाफती, लसानी तौर पे पंजाबी ज़बान का मरकज़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की पंजाब असम्बली में पंजाबी या मादरी ज़बानों के इस्तेमाल से गुरेज क्यों किया जाता है, जब अवाम से उनके नुमाइंदे पंजाबी, सराइकी, पोठोहारी में बात करते हैं तो ऐवान में यही ज़बानें अजनबी क्यों महसूस की जाती हैं। तो इसी में मैं अपना सवाल भी ऐड करूँ कि हुकूमत पंजाब जो है इन ज़बानों और जो सकाफती हमारी शनाख्त है, शायरी है, मौसीकी है, लोक विरसा है, उसकी सरकारी सतह पर जो सरपरस्ती है या फ़रोग देने के लिए कि क्या कोशिशें कर रही है। सो सवाल के दो हिस्से हैं मलिक साहब।
जी बिल्कुल, आपने बड़ा ही अच्छा किया ये सवाल करके। इसे मुझे थोड़ा अपना आप एक्सप्लेन करने की अभी मेरा ख्याल है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर आप इजाज़त दें।
जी,
देखिए, व्हेन आई वाज इलेक्टेड एज स्पीकर टू डू द फर्स्ट थिंग व्हिच आई डिड वाज टू अमेंड द रूल्स ऑफ द असेंबली, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। एंड व्हाइल अमेंडिंग दीज रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो एक 70 साल से रूल था कि आप अगर उर्दू या अंग्रेज़ी के अलावा बात करना चाहें, चाहे आपने पंजाबी में बात करनी हो, तो आपको स्पीकर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो वी जस्ट डिड अवे दैट रूल, हमने उस रूल को ख़त्म कर दिया और उसमें हमने ये लिखा कि इस खत्ते में बोलनी बोली जाने वाली वो तमाम जुबानें जिनमें सराइकी, पंजाबी, हती कि मेवाती भी, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक डेमोग्राफिक चेंज है, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मेवात के इलाके से उठ के आए हैं और 4-5 अजला में उनकी एक बड़ी खतीफ बड़ी सारी उनकी तादाद है वहाँ पे। तो हमने कहा कि अब इसके लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, एज अ मैटर ऑफ राइट यू कैन स्पीक ऑन इट। दूसरी बात जो आपने की कि ये भी मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू योर चैनल आपके तवसत से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने 78 रूल्स अमेंड किए जिनमें हमने लाइव टेलीवाइज करते हैं, हम अपनी अपनी जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनको हमने लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, एवरी वर्ड सेड एंड डन इन द हाउस एंड इन द कमेटीज इज विद द पब्लिक थ्रू दैट लाइव स्ट्रीमिंग। हमने स्टैंडिंग कमेटीज की एम्पावरमेंट की है, हमने उनको फिनेंशियल इख्तियारात दिए हैं, हमने उनको बजट मेकिंग प्रोसेस में हिस्सेदार बनाया है, हमने उनको पब्लिक पिटिशंस का राइट दिया है, हमने जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थी जैसे जेंडर इनइक्वलिटी की बात थी उसमें हमने वुमेन कॉकसेस, माइनॉरिटी कॉकसेस, चाइल्ड प्रोटेक्शन कॉकसेस, उन सारी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थी उनको एक बड़ी एक तवाना आवाज़ भी दी है। और अभी अगर आप पंजाब असम्बली की कार्रवाई को ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं तो उसमें आपको ये बड़ा वाज़े फ़र्क लगेगा और लोगों की पार्टिसिपेशन आपको बड़ी क्लियरली नज़र आएगी इन सारे इश्यूज़ पे। जहाँ तक ये हमारी कल्चरल प्रमोशन की बात है तो बड़ी चीफ मिनिस्टर पंजाब की इसमें बड़ी क्लियर पोजिशन है, शी इज़ डूइंग गुड थिंग्स। एंड अभी रिसेंटली हमने पंजाब कल्चर डे पे एक बड़ी इंस्टीट्यूशनल एक फ्रेमवर्क अनाउंस की जिसमें पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी कल्चर, उनको इजला तक लेके जाना, यूनियन काउंसिल्स तक लेके जाना, स्कूल कॉलेज की सतह तक लेके जाना, इन सब पर अच्छे इकदाम हुकूमत कर रही है जी।
माशाल्लाह। एक और सवाल जो है वो इससे ही जुड़ा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है कि जो हमारा जनूबी पंजाब है सराइकी वैसे उसमें जो एक एहसास महरूमी पाया जाता है और अब से नहीं है, उसमें तरक्याती मनसूबे हैं, फंड्स की तकसीम है और एक परसेप्शन है और कुछ हद तक ये परसेप्शन, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही गलत है या बिल्कुल ही सही है, लेकिन एक परसेप्शन ज़रूर है कि जो फंड्स लाहौर पे या जो हमारे सेंट्रल पंजाब है उस पर लगते हैं वो जो साउथ पंजाब है वहाँ पर नहीं लगते। तो आपकी नज़र में एज ए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के तौर पे आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ पसमानदगी का मसला है, वसाइल की मुनसफाना तकसीम का है, शनाख्त का है, और इस तासुर को ख़त्म करने के लिए मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है पंजाब में और मरकज़ में इस पर कुछ स्टेप्स लेने का इरादा रखती है इस महरूमी के एहसास को दूर करने में अपने स्टैंडर्ड में?
अच्छा, देखें, अब इस सवाल के भी अब दो पहलू बनते हैं। पहला सवाल तो ये है कि वो क्या इकदाम हैं जो मुस्लिम लीग लीग ने किए हैं और दूसरा कि जो इस वक्त ग्राउंड पे पोजीशन है वो क्या है।
जी
जब शहबाज साहब पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त एक बड़ी लैंडमार्क अचीवमेंट हुई, वो जो नेशनल फाइनेंस कमीशन था, 11th नेशनल फाइनेंस कमीशन, वो अचीव किया गया। उसमें आपके इल्म में होगा लाजमी तौर पे कि बलूचिस्तान को पंजाब ने अपने हिस्से में से
जी जी
1% उनके लिए उन्होंने उसको इनहांस किया। उसकी रीजन ये दी गई कि जो अंडर डेवलपमेंट है और पावर्टी है इसको बुनियाद बनाया जाए। और इसी तरह से हमारा ये भी ख्याल है कि जो हमारा इंटरिम फाइनेंस कमीशन, प्रोविंशियल इंटरिम फाइनेंस कमीशन है, उसमें पहले सिर्फ बुनियाद पॉपुलेशन थी, और क्योंकि जनूबी पंजाब में जैसा आपने भी कहा पंजाब के 34% अफराद जनूबी पंजाब में बसते हैं, तो उस वक्त जब चीफ मिनिस्टर शहबाज साहब थे तो उन्होंने उस इंटरिम फाइनेंस कमीशन में 35% ऑफ द एलोकेशन ऑफ बजट जनूबी पंजाब के लिए की, इसमें डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल दोनों शामिल है। लेकिन ये मतलब ये मसला सिर्फ फंड्स की तकसीम का नहीं है, ये मसला पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का है। कि जैसे जब मैंने आपसे बातचीत शुरू की थी तो मैंने आपसे कहा कि मुस्लिम लीग की भी और प्रीडोमिनेंटली उस वक्त कांग्रेस की भी ये बड़ी एक क्लियर पब्लिक प्लेज थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम अपने लिंग्विस्टिक, कल्चरल, जियोग्राफिकल इन सब चीज़ों को बुनियाद बना के लोगों को उनकी शनाख्त उनके सूबों के साथ देंगे। तो इसमें ज़्यादा मसला पॉलिटिकल है, ज़्यादा मसला आइडेंटिकल है, आइडेंटिटी का भी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मसला आइडेंटिटी का है। पीपल डोंट वॉन्ट टू गिव अप देयर जो उनकी बुनियाद है, यानी उनका वसीब का जो सराइकी होना या उनकी अपनी जो एक ओरिजिनलिटी है वो उसको किसी सूरत नहीं चाहते। तो इसीलिए कभी आवाज़ उठती रहती है तख्ते लाहौर के नीचे ऐसे वैसे
जी।
तो ये बातें ठीक हैं, असूली बातें हैं, इनसे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। और फिर आप ये देखें कि ये हमारा 120 मिलियन लोगों का सूबा है, अब इतने बड़े यूनिट को गवर्न करना भी एक मसला है। इसकी कोई तदवीर और कोई हिकमत अमली बनानी तो पड़ेगी, आज ना सही तो चलो अरसे के बाद।
बिल्कुल सही कहा। और जनाब स्पीकर, आप मरियम नवाज शरीफ का आपने जिक्र किया और ये एक बहुत बड़ी ऑनर है उनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कि बतौर पहली खातून वो चीफ मिनिस्टर बनी और अपने पहले साल में ही उनके काफ़ी जो इकदाम थे तरक्याती और फलाई वो तवज्जो का मरकज बने। और एक सर्वे में देख रहा था कि 60% जो शहरी हैं उन्होंने उनकी कारकर्दगी को बहुत बेहतर करार दिया, लेकिन उन पर खैर मीडिया पर उनकी खुद नुमाई और अंदाज़ हुकुमरानी पर तनकीद भी होती है और तनकीद इस पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। आपने अपनी जो डिवेलपमेंट्स का जिक्र किया और वो बहुत अच्छा है कि जो कार्रवाई बराह रास्त टेलीकास्ट की जाती है वो बहुत अच्छा है। फिर आपने वो बताया जैसे ख़वातीन अकलियतों माहौलियाती तब्दीली पर आपने एक तवज्जो दी। आपकी जो थिंग्स टू डू लिस्ट है एज ए स्पीकर वो मैं अगर जानना चाहूँ अपने सुनने वालों को जो आपको सुन रहे हैं वो शेयर करना चाहें कि आप अपने स्पीकरशिप के टेन्योर के इख्तिताम पे अपने किन इकदाम को अपनी सियासी या पार्लिमानी लेगेसी के तौर पे देखना चाहेंगे।
मुझे इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर एंड एंड हाफ नाउ जब मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं पहले तो आपसे कहूँ कि जो चीफ मिनिस्टर की उनकी जो मेन स्पीच थी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, उसमें उन्होंने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात की, उन्होंने असेंबली की ओवरसाइट के इख्तियार की बात की, उन्होंने असेंबली में अच्छी लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस की बात की। तो जो मेरी लिस्ट है उस लिस्ट में ये सारी चीज़ें शामिल हैं जिसमें हमने एक लैंडमार्क जो हमने की अमेंडमेंट्स, 74 अमेंडमेंट्स करके हमने इसको एट पार विद नेशनल असेंबली किया, एंड 6 and 7 ऑफ अमेंडमेंट्स जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस थे सेनेट की हमने उनको भी अडॉप्ट किया। हमने बाकी असेंबलियों से जैसे सिंध में हम पहले पंजाब में एक प्री बजट सेशन करते थे, लेकिन सिंध के अंदर एक अच्छी चीज़ थी कि वो एक पोस्ट बजट सेशन भी करते थे कि आप जो रकूम मुख्तस करते हैं किसी भी काम पे खर्च करने के लिए तो बाद में
इसका फॉलो
असेंबली उनका जायजा
लेगी।
हमने उनको भी अडॉप्ट किया। सो मैं अभी तो मेरी ये अटमोस्ट डिजायर है स्पीकर विच आई हैव इज टू कि मैं गवर्नमेंट को आई शुड बी गिविंग गवर्नमेंट द वे एज इट इज राइट ऑफ द गवर्नमेंट एज मेजोरिटी पार्टी, और अपोजिशन की जो है वो उसको आई शुड गिव देम द राइट टू से कि वो अपनी बात कह सकें और बगैर किसी खौफ व जबर के कह सकें. तो इस सिलसिले में आई ट्राई टू मेंटेन एट इट एट बेस्ट ऑफ द न्यूट्रलिटी जो मैं कर सकूं. कोई मेंबर असेंबली में वांट्स टू स्पीक आई नेवर स्टॉप हिम. मैं कोशिश होती है कि इसको प्रोसीजर के मुताबिक ही लेकर जाएं, लेकिन समटाइम्स इफ आई हैव टू कोई इसमें डिबेट को ज्यादा खोलने के लिए भी तो भी मैं देता हूँ कि लोग ज्यादा बोलें, दे शुड स्पीक अप एज मच एज दे कैन. जहाँ तक मुझे ये कि मेरी मेरी लेगेसी इसमें क्या हो, तो मेरी तो इसमें जी मेरा बड़ा क्लियर रिजॉल्व है इस मामले में कि असेंबली शुड बी डूइंग द ओवरसाइट बिजनेस एट द बेस्ट. उनको हर किस्म की सहूलत उसके लिए मुयसर हो. लेजिस्लेशन जो पास करें वो फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल हों, डेमोक्रेसी के डिविडेंड्स लोगों तक जाएं. और तीसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस असेंबली की तकरीम और वकार बहाल रहे, और लोगों की जो इसकी रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन है वो लोगों के साथ कनेक्टेड हो, लोगों के लिए ओपननेस हो. जैसे हमने पब्लिक पिटिशंस का एक फोरा अभी ऐड किया है रूल्स के अंदर लेकर आए हैं, तो ये इसमें ऑल इंक्लूसिवनेस हो, लोग इसके अंदर अपनी शमूलियत फील करें. मैं जस्ट फॉर योर आपको बताने के लिए कि हमने एक टाइम टेबल विद यूनिवर्सिटीज किया हुआ है, विद कॉलेजेस किया हुआ है. In our every session, we invite a different set of people from business community, from educational institutions. They come and witness the proceedings of the house. Humne internship program students ke liye kiye hue hain. Wo hamari committee meetings ko assist karte hain. The list is increasing into thousands now. So, ek all inclusiveness, all transparent, all jo hai live streamed, rules at par with the National Assembly. All empowered house and empowered committees. This is at the best which we are trying to.
जबरदस्त. सवालात और बहुत हैं लेकिन वक्त की बंदिश है. बिल्कुल ही हल्का फुल्का सा मुख्तसर सा, मलिक साहब का पसंदीदा पंजाबी शायर या गुलकार कौन है?
ये मेरा जो एक शेर है वो मुन्नू भाई का शेर है, और वो है जी कि हो नहीं जाता करना पैंदा है. इसके साथ मैं फ्रेंकली मुझे जब भी सुनता हूँ मुझे बड़ा इंस्पायर करता है ये शेर. और जो मेरे सबसे पसंदीदा शायर हैं वो मुनीर नियाज़ी हैं.
क्या बात है, क्या बात है. और एक और मुख्तसर सा सवाल कि मलिक, मोहम्मद अहमद खान अगर सियासत में ना होते तो फिर क्या होते? वकालत, कोई तदरीस या किसी और पैशन या प्रोफेशन में?
ये आपने तीनों चीजें खुद ही कह दी जी. वकील पेशे के एतबार से मुझे, और अगर वकालत और सियासत दोनों ना कर रहा होता तो खेतीबाड़ी कर रहा होता.
और मलिक साहब आखिर में जो आपको सारे सामीन सुन रहे हैं, एक हम रिक्वेस्ट किया करते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से. मेरा पैगाम पाकिस्तान, हमारे प्रोग्राम का ये नाम भी यही है, कि क्या पैगाम देना चाहेंगे सुनने वालों को जो आपको वैंकूवर, कैलगरी, एडमिंटन में, टोरंटो में सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आखिर में?
देखिए मैं जो आप लोग बैरून मुल्क हैं, आपकी क्योंकि मैं खुद भी एक लंबा अरसा चाहे अपनी तालीम के सिलसिले में रहा, तो मैं समझता हूँ कि वतन से दूरी की एक अपनी एक फीलिंग होती है. लेकिन मैं ये बिल्कुल जैसे एक रिजॉल्व्ड बात मैं कहने लगा हूँ, जिस पे किसी सवाल जवाब की या बहस तफखीस की जरूरत नहीं है. आपकी एज एक्सपर्ट अपने मुल्क के साथ जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही शानदार है, और मैं समझता हूँ कि आप हर हाल में, चाहे वतन से दूर भी हैं, आप एम्बेसडर्स हैं अपने ममालिक के लिए, और मैं समझता हूँ कि आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के वेलबींग में.
सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया. खुश रहे, आबाद रहे, आपके साथ बहुत सारी बेस्ट विशेज, दुआएं, फिर आपसे बात होगी. शुक्रिया.
थैंक यू.